अध्याय 72 अबशालोम का विद्रोह। ये अध्याय दूसरा शमूएल 13:19 पर आधारित है। वह चार गुना वापस करेगा नातान भविष्यवक्ता से दृष्टांत सुनने पर। दाऊद की स्वयं पर यह सबसे संयोगिक दंडाज्ञा थी और स्वयं अपनी दंडाज्ञा के अनुसार उसका न्याय होना था। उसके चार पुत्रों की मृत्यु निश्चित थी और प्रत्येक की हानि का कारण उनके पिता का पाप था। दाऊद ने अपने पहले पुत्र अमनोन के कुकर्म को बिना दंड दिए या बिना फटकार लगाए जाने दिया। व्यवस्था के अनुसार व्यभिचार करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था और अमनोन के अस्वाभाविक अपराध ने उसे दो गुना दोषी ठहराया था। लेकिन दाऊद, जो अपने निजी पाप के कारण स्वयं को दोषी मानता था, अपराधी का न्याय नहीं कर सका। दो वर्षों तक अबशालोम, जो अपनी बहन का, जिसके साथ अनर्थ हुआ था, स्वाभाविक रक्षक था, प्रतिशोध के अपने उद्देश्य को छुपाए बैठा था, क्योंकि अंत में वह निश्चित वार करना चाहता था। राजा के पुत्रों के भोज के समय अगम्यगामी व उन्मत्त अमनोन को अपने ही भाई के आदेशानुसार मार डाला गया। दाऊद को दो गुना दंड दिया जा चुका था। ये भयानक संदेश उसके पास पहुंचाया गया। अबशालोम ने सब राजकुमारों को मार डाला और उनमें से एक भी नहीं बचा। तब दाऊद ने उठकर अपने वस्त्र फाड़े और भूमि पर गिर पड़ा और उसके सब कर्मचारी वस्त्र फाड़े हुए उसके पास खड़े रहे। आश्चर्यचकित होकर जब राजा के पुत्र घर लौटे तो उन्होंने अपने पिता को सच्चाई से अवगत कराया। केवल अमनोन मारा गया था और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे और राजा भी अपने सब कर्मचारियों के साथ बिलक बिलक कर रोने लगा। लेकिन अबशालोम गशूर के राजा अम्मीहूर के पुत्र तलमे के पास चला गया। तलमे अबशालोम का नाना था। दाऊद के अन्य पुत्रों की तरह अमनोन को भी अपनी मनमानी करने की अनुमति दे दी गई थी। उसने अपने हृदय की प्रत्येक अभिलाषा को संतुष्ट करना चाहा था और वो परमेश्वर के नियमों के प्रति उदासीन था। अपने महापाप के बावजूद परमेश्वर ने उसे बहुत दिनों के लिए सहन किया था। दो वर्षों तक उसे प्रायश्चित का अवसर प्रदान किया गया, लेकिन वो पाप करता रहा और उसके दोष के साथ ही उसे न्याय के दिन के न्याय की प्रतीक्षा करने के लिए मार दिया गया। दाऊद ने अमनोन के अपराध को दंडित करने के कर्तव्य की उपेक्षा की थी और पिता व राजा की अविश्वसनीयता और पुत्र के अपशतापी होने के कारण परमेश्वर ने घटनाओं को स्वाभाविक तरीके से होने की अनुमति दे दी और अबशालोम को बाधित नहीं किया। जब माता पिता या शासक अधर्म को दंडित करने के कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं, परमेश्वर उस विषय को अपने हाथ में ले लेता है। उसकी नियंत्रकारी शक्ति उस उपाय में होगी जो पाप के सूत्रधारों से दूर है, ताकि परिस्थितियों का ऐसा तांता उत्पन्न होगा जो पाप को पाप द्वारा दंडित करेगा। अमनोन के प्रति दाऊद के अन्यायपूर्ण दयालुतापूर्ण व्यवहार के दुष्परिणाम समाप्त नहीं हुए थे, क्योंकि यहां से अबशालोम की अपने पिता से विमुखता प्रारंभ हुई। अबशालोम के गशूर भाग जाने के बाद दाऊद को लगा कि उसका पुत्र दंड का पात्र है और उसने उसे लौट कर आने की स्वीकृति न दी। इससे जिन जटिल विपदाओं में वो पड़ने वाला था कम होने के बजाय बढ़ने वाली थी। राज्यों के मामलों में सहभागिता से उसके प्रवास के कारण बाहर किए जाने पर कर्मठ, महत्वाकांक्षी और सिद्धांतहीन अबशालोम खतरनाक षड्यंत्र रचने लगा। दो वर्ष बीत जाने पर योआब ने पिता और पुत्र के बीच पुनर्मिलन कराने का निश्चय किया। इस लक्ष्य को दृष्टि में रखते हुए उसने बुद्धिमानी के लिए प्रख्यात एक स्त्री तकुआ की सहायता ली। योआब के निर्देश से इस स्त्री ने दाऊद के सम्मुख अपना प्रतिनिधित्व एक विधवा के तौर पर किया, जिसके दो पुत्र ही उसका एकमात्र सहारा रहे थे। एक लड़ाई में एक ने दूसरे को मार दिया और अब परिवार के सभी परिजन ये मांग कर रहे थे कि उत्तरजीवी को उन्हें सौंप दिया जाए। मां ने कहा, इस तरह वे मेरे अंगारे जो भी बज गए हैं बुझाएंगे और मेरे पति का नाम और संतान धरती पर से मिटा देंगे। इस विनती ने राजा की भावनाओं को छुआ और उसने उस स्त्री को उसके पुत्र की राजसी सुरक्षा देने का आश्वासन दिया। राजा से नौजवान की सुरक्षा की आवर्ती प्रतिज्ञाएं कराने के बाद उसने राजा की सहिष्णुता की विनती की और राजा को दोषी घोषित किया, क्योंकि वो अपने द्वारा निष्कासित को वापस लेकर नहीं आया था। उसने कहा, हमको तो मरना है और हम भूमि पर गिरे हुए जल के समान ठहरेंगे, तो फिर उठाया नहीं जाता, ना ही परमेश्वर किसी व्यक्ति का पक्ष लेता है। फिर भी वो ऐसी युक्ति करता है कि उसके निर्वासित उससे दूर न हों। पापी के प्रति परमेश्वर के प्रेम का ऐसा संवेदनशील चित्रांकन, वो भी उसके अशिष्ट योद्धा योआब की ओर से आया हुआ, इस बात का प्रमाण है कि इज़राइल उद्धार के महान सत्य से परिचित थे। राजा ने स्वयं के लिए परमेश्वर की करुणा की आवश्यकता को महसूस किया और वो निवेदन का प्रतिकार न कर सका। योआब को आज्ञा दी गई, तू जाकर उस नौजवान अबशालोम को लौटा ला। अबशालोम को यरूशलेम लौटने की अनुमति दे दी गई, लेकिन उसे दरबार में उपस्थित होने या अपने पिता से मिलने की अनुमति नहीं थी। दाऊद ने अपनी संतान के प्रति अपने दयालुतापूर्ण व्यवहार के दुष्परिणाम देखने आरंभ कर दिए थे, और क्योंकि वह अपने इस सुदर्शन और गुण संपन्न पुत्र से अत्यंत प्रेम करता था, उसने ये आवश्यक समझा कि ऐसे अपराध के प्रति घृणा को अबशालोम और प्रजा के लिए सबक के तौर पर प्रकट किया जाए। अबशालोम 2 वर्षों तक अपने निजी निवास में रहा, लेकिन वह दरबार से निष्कासित रहा। उसकी बहन उसके साथ थी और उसकी उपस्थिति ने उस पर किए गए अप्रतिकार्य दुष्कर्म की स्मृति को जीवित रखा। लोकप्रिय अनुमान में राजकुमार अपराधी न होकर नायक था। इस अनुकूल परिस्थिति के होते हुए उसने लोगों के हृदयों को जीतना आरंभ किया। उसका व्यक्तिगत आविर्भाव ऐसा था कि वह देखने वालों को आकर्षित करता था। समस्त इज़राइल में सुंदरता के कारण बहुत प्रशंसा योग्य अबशालोम के तुल्य और कोई न था। उसमें सिर से पांव तक कोई दोष नहीं था। राजा के लिए यह विवेकपूर्ण नहीं था कि अबशालोम जैसे स्वभाव वाले महत्वाकांक्षी, अति संवेदनशील और आवेशपूर्ण व्यक्ति को 2 वर्ष से अधिक समय तक तथाकथित उलाहना पर चिंतन करने के लिए छोड़ दिया जाए, और अबशालोम को यरूशलेम वापसी की अनुमति देकर भी उसे राजा की उपस्थिति में होने से वंचित रखने में दाऊद के निर्णय ने लोगों को अबशालोम के प्रति संवेदनशील बनाया। परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति आज्ञा उल्लंघन की स्मृति हर पल युद्ध के सम्मुख थी, और इस कारण वो नैतिक रूप से शक्तिहीन हो गया था। वो दुर्बल और अनिश्चित था, जबकि अपने पाप से पहले वो साहसी और कृतसंकल्प था। लोगों पर उसका प्रभाव घट गया। इस सब ने उसके अस्वाभाविक पुत्र के षड्यंत्रों को बढ़ावा दिया। योआब के प्रभाव से अबशालोम को अपने पिता की उपस्थिति में प्रवेश मिला, और हालांकि एक दिखावटी पुनर्मिलन था, अबशालोम ने अपनी महत्वाकांक्षी युक्तियां जारी रखीं। अब उसने एक राजसी शान अपना ली। उसके पास रथ और घोड़े थे, और 50 पुरुष उसके आगे आगे भागते थे। और जब राजा एकांत और कार्यनिवृत्ति की इच्छा के प्रति प्रवृत्त था, अबशालोम ने तत्परता से लोकसम्मत समर्थन प्राप्त किया। दाऊद की उदासीनता और अनिश्चितता उसके अधीनस्थों तक फैल गई, और न्याय के शासन प्रबंध में उपेक्षा और विलंब के लक्षण दिखाई देने लगे। अबशालोम ने असंतोष के प्रत्येक कारण को धूर्तता से अपने लाभ के लिए प्रयोग किया। प्रतिदिन यह शालीन व्यक्तित्व वाला पुरुष नगर के फाटक पर दिखाई देता था, जहां भारी संख्या में प्रार्थी अपने कष्टों को निवारण के लिए प्रस्तुत करने की प्रतीक्षा करते थे। अबशालोम उनके साथ मेल मिलाप करता और उनकी शिकायतों को सुनता, उनके दुखों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करता और शासन की अयोग्यता पर खेद प्रकट करता। इस प्रकार एक इज़राइली पुरुष की कहानी को सुनकर राजकुमार उत्तर देता, तेरा पक्ष तो ठीक और न्याय का है, परंतु राजा की ओर से तेरी सुनने वाला कोई नहीं है। भला होता कि मैं इस देश में न्यायी ठहराया जाता, तब जितने मुकदमे वाले होते वे सब मेरे ही पास आते और मैं उनका न्याय चुकाता। फिर जब कोई उसे दंडवत करने को निकट आता, तब वह हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ के चूम लेता था। राजकुमार के धूर्ततापूर्ण उकसाव से उत्तेजित सरकार के प्रति असंतोष तेजी से फैल रहा था। सभी के होठों पर अबशालोम की प्रशंसा थी। सामान्य तौर पर उसे राज्य का उत्तराधिकारी माना जाने लगा। लोग गर्व से उसे इस उच्च पद के योग्य मानते थे, और उनमें उसके सिंहासन पर विराजमान होने की अभिलाषा उत्पन्न हुई। इस प्रकार अबशालोम ने इज़राइली मनुष्यों के मन को हर लिया। पुत्र के प्रेम में अंधे दाऊद को तनिक भी संदेह नहीं हुआ। दाऊद का मानना था कि अबशालोम ने पुनर्मिलन पर प्रसन्नता की अभिव्यक्ति के तौर पर दरबार को सम्मान देने के लिए राजसी शान को अपनाया था। जो होने वाला था उसके लिए लोगों के मनों को तैयार कर अबशालोम ने सभी गोत्रों में गुप्त रूप से चुने हुए व्यक्तियों को विद्रोह के लिए उपाय जानने के लिए भेजा, और अब उसने राजद्रोही युक्तियों को छुपाए रखने के लिए धर्मनिष्ठा के आवरण को धारण किया। बहुत समय पहले प्रवास के दौरान की गई प्रतिज्ञा को हेब्रोन में पूर्ण होना था। अबशालोम ने राजा से कहा, मुझे हेब्रोन जाकर अपनी उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने दे जो मैंने यहोवा के सामने की थी। तेरा दास जब अराम के गशूर में रहता था तब मैंने यहोवा से प्रतिज्ञा की कि यदि यहोवा मुझे सचमुच यरूशलेम को लौटा ले जाए तो मैं यहोवा की उपासना करूंगा। अपने पुत्र में धार्मिकता के इस प्रमाण से सांत्वना पाकर प्रेमी पिता ने उसे आशीर्वाद के साथ विदा किया। षड्यंत्र अब पूर्ण रूप से तैयार हो चुका था। अबशालोम के पाखंड का सर्वोच्च अभिनय न केवल राजा को धोखा देने के लिए तैयार किया गया था, वरन लोगों के विश्वास को स्थापित कर उन्हें परमेश्वर द्वारा चुने हुए राजा के विरुद्ध विद्रोह करवाने के लिए था। अबशालोम हेब्रोन के लिए निकल पड़ा और उसके संग 200 आमंत्रित पुरुष यरूशलेम से गए। वे साफ मन से उसका भेद बिना जाने गए। ये पुरुष अबशालोम के साथ गए, पर इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि पुत्र के लिए प्रेम उन्हें पिता के विरुद्ध उपद्रव करने की ओर ले जा रहा था। हेब्रोन पहुंचकर अबशालोम ने दाऊद के प्रमुख सलाहकार को बुलवाया। अहितोपेल अपनी बुद्धिमानी के लिए विख्यात था और उसकी राय को भविष्यवक्ता की सम्मति के समान विश्वसनीय और ज्ञानपूर्ण माना जाता था। अहितोपेल षड्यंत्रकारियों के पक्ष में हो गया और उसके समर्थन से अबशालोम के अभियान की सफलता निश्चित प्रतीत होने लगी, जिससे देश के सभी भागों से प्रभावशाली पुरुष उसके मोर्चे की ओर आकर्षित होने लगे। जैसे ही विद्रोह के नरसिंगे का शब्द सुनाई दिया, राजकुमार के भेदियों ने देश भर से अबशालोम के राजा होने का समाचार फैला दिया और कई लोग उसके पक्ष में एकत्रित हो गए। तब किसी ने यरूशलेम में राजा के पास ये संदेश पहुंचाया, दाऊद मानो अचानक नींद से जागा जब उसने अपने सिंहासन के पास ही विद्रोह को उत्पन्न होते देखा। उसका अपना पुत्र, जिससे उसने इतना प्रेम किया था और जिस पर उसने विश्वास किया था, उसका ताज छीनने की और निस्संदेह उसके प्राण लेने की योजना बनाता रहा था। इस घोर संकट में दाऊद ने उस पर लंबे समय से ठहरी हुई उदासी को दूर हटाया और अपने प्रारंभिक वर्षों वाली भावना के साथ इस भयानक आपात स्थिति की सामना करने के लिए तैयार हुआ। केवल 20 मील की दूरी पर अबशालोम हेब्रोन में अपनी सेना में वृद्धि कर रहा था। विद्रोही शीघ्र ही यरूशलेम के फाटकों पर पहुंचने वाले थे। अपने महल से दाऊद ने अपनी राजधानी को देखा, सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण, राजाधिराज का नगर। भजन संहिता 48 आयत 2। उसे नरसंहार और सर्वनाश को प्राप्त हो जाने के लिए छोड़ देने के विचार से वह कौप उठा। क्या उसे उसके सिंहासन के प्रति अभी भी सत्यनिष्ठ लोगों को अपनी सहायता के लिए बुलाना चाहिए और राजधानी को अपने अधिकृत रखने का निश्चित निर्णय लेना चाहिए? क्या उसे यरूशलेम को लहू में डूब जाने देना चाहिए? उसने निर्णय ले लिया, चुने हुए नगर पर युद्ध की विभत्सता का साया नहीं पड़ेगा। वह यरूशलेम छोड़कर अपने लोगों को उसके समर्थन में संगठित होने का अवसर प्रदान करके उनकी स्वामी भक्ति की परीक्षा लेगा। इस महासंकट के समय उसका परमेश्वर और अपने लोगों के प्रति यह कर्तव्य था कि वह उस अधिकार को कायम रखे जो स्वर्ग ने उसे प्रदान किया था। संघर्ष की समस्या को परमेश्वर के भरोसे छोड़ देगा। दुख और दीनता के साथ दाऊद यरूशलेम के फाटक से बाहर निकल गया। अपने लाडले पुत्र के विद्रोह द्वारा अपने सिंहासन से, अपने महल से, परमेश्वर के संदूक से दूर कर दिया गया। एक उदास मंडली उसके पीछे पीछे होली, मानो किसी का जनाजा उठ रहा हो। दाऊद के अंगरक्षक करेती और पलेती, गत से आए 600 गति, इते के नेतृत्व में राजा के साथ हो लिए। पर दाऊद, जो कि स्वभाव से निस्वार्थी था, इस बात से सहमत न हो सका कि जो परदेशी उसकी शरण में आए थे इस विपत्ति में सम्मिलित हों। उसके लिए, इस बलिदान के लिए उन्हें तैयार देखकर उसने आश्चर्य व्यक्त किया। तब राजा ने गति इते से पूछा, हमारे संग तू क्यों चलता है? अपने स्थान पर लौट और राजा के साथ रहे, क्योंकि तू परदेशी है और प्रवासी भी। तू तो कल ही आया है, क्या मैं आज ही तुझे मारा मारा फिराऊं? मैं तो जहां जा सकेगा वहां जाऊंगा। तू लौट जा और अपने भाइयों को भी लौटा दे। ईश्वर की करुणा और सच्चाई तेरे संग रहे। इते ने उत्तर दिया, यहोवा के जीवन की शपथ और मेरे प्रभु राजा के जीवन की शपथ, जिस किसी स्थान में मेरा प्रभु राजा रहेगा, चाहे मरने के लिए हो चाहे जीवित रहने के लिए हो, उसी स्थान में तेरा दास भी रहेगा। ये पुरुष मूर्ति पूजा को छोड़कर यहोवा की आराधना करने लगे थे और शिष्टता से उन्होंने अपने परमेश्वर और अपने राजा के प्रति अपनी स्वामी भक्ति को प्रमाणित किया। कृतज्ञतापूर्ण हृदय से दाऊद ने अपने डूबते प्रतीत हो रहे मनोरथ के प्रति उनकी श्रद्धा को स्वीकार किया और वे सब किद्रोन नदी को पार कर बीहड़ के मार्ग पर हो लिए।
जनमंडली फिर से रुक गई। पवित्र वस्त्र धारण किए एक दल उनकी ओर चला आ रहा था और क्या देखने में आया कि सादोक भी और उसके संग सब लेवी परमेश्वर की वाचा का संदूक उठाए हुए है। दाऊद के अनुयायियों ने इसे अच्छा शगुन माना। उनके लिए उस पवित्र प्रतीक की उपस्थिति उनके छुटकारे और विजय की प्रतिज्ञा थी। उससे लोगों को राजा के समर्थन के लिए साहस जुटाने की प्रेरणा मिली। यरूशलेम में उसकी अनुपस्थिति अबशालोम के समर्थकों में भय उत्पन्न करने वाली थी। संदूक को देखकर एक क्षण के लिए दाऊद का हृदय हर्ष और आशा से प्रफुल्लित हो गया, लेकिन शीघ्र ही उसके मन में अन्य विचार आए। धरोहर का नियुक्त शासक होने के नाते उस पर एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व था। इसराइल के राजा के मन में सबसे ऊपर निजी लाभ नहीं, वरन परमेश्वर की महिमा और अपने लोगों की भलाई होनी चाहिए थी। करूबों के बीच वास करने वाले परमेश्वर ने यरूशलेम के संदर्भ में कहा था, ये मेरा विश्राम स्थान है। भजन संहिता 132 आयत 14। और ईश्वर की आज्ञा के बिना ना तो याजक और ना ही राजा को उसकी उपस्थिति के प्रतीक को वहां से हटाने का अधिकार था। दाऊद जानता था कि उसके जीवन और हृदय का पवित्र सिद्धांतों के साथ सामंजस्य होना चाहिए, नहीं तो संदूक सफलता का नहीं वरन महाविपदा का साधन होगा। उसका महापाप सदैव उसके सामने था। इस षड्यंत्र में उसने परमेश्वर का न्यायसंगत निर्णय देखा। जो तलवार उसके घर से नहीं निकली थी वरन म्यान से बाहर आ गई थी। वह नहीं जानता था कि संघर्ष का परिणाम क्या होने वाला था। उसके लिए यह उचित नहीं था कि वह राज्य की राजधानी से उन पवित्र आज्ञाओं को हटाए जिनमें उनके पवित्र प्रभु की इच्छा समाविष्ट थी, जो राज्य का संविधान और उसकी समृद्धि का आधार थे। दाऊद ने सादोक को आदेश दिया, परमेश्वर के संदूक को नगर में लौटा ले जा। यदि यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो वह मुझे लौटाकर उसको और अपने वास स्थान को भी दिखाए, परंतु यदि वह मुझसे ऐसा कहे मैं तुझसे प्रसन्न नहीं तो भी मैं हाजिर हूं। जैसा उसको भाए वैसा ही वह मेरे साथ बर्ताव करे। दाऊद ने आगे कहा, क्या तू दर्शी नहीं है? इसलिए कुशल क्षेम से नगर को लौट जा और तेरा पुत्र अहिमास और अब्यातार का पुत्र योनातान दोनों तुम्हारे संग लौटे। सुनो, मैं जंगल के घाट के पास तब तक ठहरा रहूंगा जब तक मुझे तुम लोगों से हाल का समाचार न मिले। नगर में याजक आतताइयों के प्रयोजन और गतिविधियां जानकर उन्हें अपने पुत्रों अहिमाज और योनातन के माध्यम से राजा तक पहुंचाने हेतु दाऊद के लिए यह अच्छा कार्य कर सकते थे।
जैसे ही याजक यरूशलेम की ओर पीछे मुड़े, प्रस्थान करती जनमंडली पर एक गहरी परछाई सी छा गई। उनका राजा एक पलायक, स्वयं वे निष्कासित, परमेश्वर के संदूक से भी त्याग दिए गए पूर्वाभास और भय से भविष्य अंधकारमय था। तब दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढांके नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा और जितने लोग उसके संग थे वे भी सिर ढांके रोते हुए चढ़ गए। तब दाऊद को यह समाचार मिला कि अबशालोम के संगी राजद्रोहियों के साथ अहितोपेल भी था। फिर से दाऊद को उसकी विपत्तियों में उसके पाप के परिणामों को देखने के लिए विवश किया गया। राजनैतिक अधिकारियों में सबसे चतुर और सबसे योग्य अहितोपेल का पक्ष त्याग उसकी अपनी पोती बतशेबा के साथ हुए अनर्थ से जुड़े पारिवारिक अपमान के लिए प्रतिशोध से प्रेरित था।
और दाऊद ने कहा, हे यहोवा, अहितोपेल की सम्मति को मूर्खता बना दे। चोटी पर पहुंचकर दाऊद अपनी आत्मा का बोझ प्रभु पर डालकर दीन होकर परमेश्वर की करुणा में याचना करते हुए प्रार्थना के लिए नतमस्तक हुआ। ऐसा लगा मानो उसकी प्रार्थना का तत्काल ही उत्तर आया। एरेकी हूशै, एक बुद्धिमान और योग्य सलाहकार जिसने स्वयं को दाऊद का विश्वसनीय मित्र प्रमाणित किया था, अपना अंगरखा फाड़े, सिर पर मिट्टी डाले हुए अपदस्त और पलायक राजा के साथ अपनी नियति को दाव पर लगाने आया। दाऊद ने मानो ईश्वरीय प्रबोधन से देखा कि हूशै जैसे विश्वसनीय और निर्मल हृदय व्यक्ति की राजधानी में होने वाली सभाओं में राजा के हित में कार्य करने के लिए आवश्यकता थी। दाऊद के निवेदन पर हूशै अबशालोम को अपनी सेवाएं देने और अहितोपेल की कूटल सम्मति को निष्फल करने के लिए यरूशलेम को लौट गया। अंधकार में प्रकाश की इस किरण के साथ राजा और उसके समर्थक जैतून पूर्वी ढलान से उतरकर एक पहाड़ी निर्जन स्थान और खड़ी घाटियों से होते हुए पथरीले और ढलान वाले मार्ग के किनारे किनारे यर्दन की ओर गए। और जब राजा दाऊद बहुरीम पहुंचा, तब शाऊल का एक कुटुंबी वहां से निकला। वह गेरा का पुत्र शिमी था और वह कोसता हुआ आया। वह दाऊद पर और राजा दाऊद के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा और शूरवीरों समेत सब लोग उसकी दाहिनी और बाईं दोनों ओर थे। शिमी कोसता हुआ यो बकता गया, दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, निकल जा, निकल जा। यहोवा ने तुझसे शाऊल के घराने के खून का पूरा बदला लिया है, जिसके स्थान पर तू राजा बना है। यहोवा ने राज्य को तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ कर दिया है, और इसलिए कि तू खूनी है, तू अपनी बुराई में आप फंस गया। दाऊद की समृद्धि के समय शिमी ने बोल और कर्म से कभी भी ये नहीं जताया था कि वह एक स्वामी भक्त व्यक्ति नहीं था, लेकिन राजा के कष्ट में इस बिन्यामीन ने अपना वास्तविक चरित्र प्रकट किया। जब दाऊद सिंहासन पर विराजमान था, उसने दाऊद का सम्मान किया था, लेकिन उसकी मानहानि में उसे श्राप दिया। नीच और स्वार्थी वह दूसरों को भी अपने जैसा आचार भ्रष्ट समझता था, और शैतान से प्रेरणा पाकर उसने उस पर अपनी घृणा को उड़ेला, जिसे परमेश्वर ने ताला था। जो कष्ट में होता है, उसे धिक्कारने में या उसकी दुर्गति में या उस पर विजयी होने की भावना शैतान की भावना होती है। दाऊद के विरुद्ध शिमी के आरोप सरासर झूठे थे, एक निराधार विद्वेषपूर्ण लांछन। दाऊद शाऊल और उसके घराने के प्रति अनर्थ का दोषी नहीं था। जब शाऊल पूर्ण रूप से दाऊद के अधीन था और वह उसे मार सकता था, उसने केवल उसके चोगे का सिरा काटा और परमेश्वर के अभिषिक्त के प्रति इस निरादर को दिखाने के लिए स्वयं को दोषी माना। जब उसे अहेर के पशु जैसा मानकर उसका पीछा किया जा रहा था, तब भी दाऊद ने मनुष्य के जीवन के लिए पवित्र सम्मान का स्पष्ट प्रमाण दिया था। एक दिन जब वह अदुल्लाम की गुफा में छुपा बैठा था और उसके मन में विचार आए, पलायक ने कहा, कौन मुझे बेतलहम के फाटक के पास वाले कुएं का पानी पिलाएगा? दूसरा शमूएल 23:16। उस समय बेतलहम पलिश्तियों के अधिकार में था, लेकिन दाऊद के तीन वीर पलिश्तियों के प्रहरियों पर टूट पड़े और बेतलहम के फाटक के कुएं से पानी भरकर दाऊद के पास ले आए। दाऊद उस जल को ग्रहण नहीं कर सका। उसने पुकार कर कहा, हे यहोवा, मुझसे ऐसा काम दूर रहे। क्या मैं उन मनुष्यों का लहू पीऊं जो अपने प्राणों पर खेल कर गए थे? और उसने उस जल को परमेश्वर को भेंट के रूप में श्रद्धा से उंडेल दिया। दाऊद एक योद्धा रहा था। उसका जीवन अधिकतर हिंसा के दृश्यों के बीच बीता था, लेकिन जितने भी ऐसी कठिन परीक्षा से निकले हैं, उनमें बहुत कम है वे जो दाऊद की तरह उसके कठोर बना देने वाले और हतोत्साहित कर देने वाले प्रभाव से कम प्रभावित हुए हैं।
दाऊद का भांजा अबीशै, जो दाऊद के शूरवीर कप्तानों में से एक था, शिमी के अपमानजनक शब्दों को धैर्य से नहीं सुन सका। उसने कहा, यह मरा हुआ कुत्ता मेरे प्रभु राजा को क्यों श्राप दे?
मुझे ऊपर जाकर उसका सिर धर से अलग करने दे। लेकिन राजा ने उसे मना कर दिया। उसने कहा, जब मेरा निज पुत्र भी मेरे प्राण लेना चाहता है तो यह बिन्यामीन अब ऐसा क्यों न करे। उसको अकेला छोड़ दो और श्राप देने दो, क्योंकि यहोवा ने उससे कहा है। कदाचित यहोवा इस उपद्रव पर जो मुझ पर हो रहा है दृष्टि करके आज के श्राप के बदले मेरा भला करे। अंतरात्मा दाऊद को कटु और अपमानजनक सत्य से कचोट रही थी। उसकी विश्वसनीय प्रजा नियति के इस अप्रत्याशित परिवर्तन पर अचंभा कर रही थी। लेकिन राजा के लिए यह कोई रहस्य नहीं था। उसे ऐसी घड़ी का प्राय पूर्वाभास हुआ था। उसे आश्चर्य था कि परमेश्वर ने इतने लंबे समय के लिए उसके पापों को सहन किया था और जिस दंड के लायक दाऊद था उसमें विलंब किया था, और अब अपने इस त्वरित और दुखदायी पलायन में नंगे पैर शाही वस्त्र के बजाय सन का वस्त्र धारण किए हुए, और जब उसके अनुयायियों का विलाप पहाड़ों में गूंज रहा था, उसने अपनी प्रिय राजधानी के बारे में सोचा, उस स्थान के बारे में सोचा जो उसके पाप का दृश्य रहा था। और जब उसने परमेश्वर की अच्छाई और चिर सहिष्णुता का स्मरण किया, वह पूर्णतया निराश नहीं रहा। उसे महसूस हुआ कि परमेश्वर उस पर अब भी दया करेगा।
अनर्थ करने वाले कई लोग दाऊद के पतन की ओर संकेत करके अपने पाप को क्षम्य मानते हैं, लेकिन बहुत कम है वे जो दाऊद के प्रायश्चित और उसकी दीनता को प्रकट करते हैं। कितने कम है वे जो दंड और फटकार को दाऊद के से धैर्य और सहनशीलता के साथ सहन करते हैं। दाऊद ने अपने पाप का अंगीकार किया और वर्षों तक वो परमेश्वर के विश्वसनीय दास के तौर पर अपने कर्तव्य का पालन करता रहा। उसने अपने राज्य के उत्थान के लिए श्रम किया और उसके शासन काल में वो शक्ति और समृद्धि की उस ऊंचाई पर पहुंचा जहां पहले कभी नहीं पहुंचा था। उसने परमेश्वर के भवन निर्माण के लिए बहुतायत से बहुमूल्य सामग्री एकत्रित की थी, और क्या अब उसके जीवन भर का श्रम व्यर्थ होने जा रहा था? क्या समर्पित श्रम के वर्षों का परिणाम शासन कला और समर्पण और प्रतिभा के कार्य उस देशद्रोही और धृष्ट पुत्र के हाथ में चले जाएं, जिसने ना ही परमेश्वर के सम्मान का और ना ही इसराइल की समृद्धि का लिहाज किया? कितना स्वाभाविक प्रतीत होता इस यातना में परमेश्वर के विरुद्ध दाऊद का कुड़कुड़ाना। लेकिन दाऊद ने अपने निजी पाप में अपने कष्ट का कारण देखा। भविष्यवक्ता मीका के शब्द में वही भावना है जिसने दाऊद के हृदय को प्रेरणा दी। ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इस कारण मैं उस समय तक उसके कोध को सहता रहूंगा जब तक वह मेरा मुकदमा लड़कर मेरा न्याय न चुकाएगा। मीका 7:8-9। और परमेश्वर ने दाऊद को छोड़ा नहीं। उसके अनुभव का यह अध्याय जब उसने सबसे निर्दयी अनर्थ और अपमान की स्थिति में स्वयं को दीन, निस्वार्थी, उदार और विनम्र प्रमाणित किया, उसके संपूर्ण अनुभव में श्रेष्ठ था। इसराइल का राजा कभी भी परमेश्वर की दृष्टि में वास्तव में इतना महान नहीं था जितना कि वह अपनी सार्वजनिक दीनता की घड़ी में ठहरा। यदि परमेश्वर ने दाऊद को बिना फटकारे पाप करते रहने दिया होता और पवित्र आज्ञाओं का उल्लंघन करते हुए भी सिंहासन पर शांति और समृद्धि के साथ रहने दिया होता, तो अविश्वासी और नास्तिक को बाइबल के धर्म को निंदा के तौर पर दाऊद के इतिहास का विवरण देने का बहाना मिल जाता। लेकिन जिस अनुभव से उसने दाऊद को गुजरने के लिए विवश किया, उसमें प्रभु दिखाता है कि वो पाप को ना ही बिना दंड जाने दे सकता है और ना ही सहन कर सकता है। और दाऊद का इतिहास हमें उन महान उद्देश्यों को देखने के लिए योग्य बनाता है जो पाप से संबंधित व्यवहार में परमेश्वर की दृष्टि में है। वो हमें कड़ी से कड़ी दंडाज्ञा के माध्यम से भी परमेश्वर की करुणा और उपकार के उद्देश्यों के क्रियान्वयन का संकेत पाने के योग्य बनाता है। उसने दाऊद को दंड भुगतने दिया, लेकिन उसने दाऊद को नष्ट नहीं किया। आग की भट्टी निर्मल या शुद्ध करने के लिए होती है, भस्म करने के लिए नहीं। प्रभु कहता है, यदि वे मेरी विधियों का उल्लंघन करें और मेरी आज्ञाओं को न माने, तो मैं उनके अपराध का दंड सोटे से और उनके अधर्म का दंड कोड़े से दूंगा। परंतु मैं अपनी करुणा उस पर से न हटाऊंगा और न सच्चाई त्याग कर झूठा ठहरूंगा। भजन संहिता 89:31-33।
दाऊद के यरूशलेम छोड़ने के तुरंत बाद अबशालोम और उसकी सेना ने प्रवेश किया और बिना संघर्ष के इसराइल के गढ़ को अधिकृत कर लिया। नया नया मुकुट पहने सम्राट का अभिवादन करने में सर्वप्रथम हूशै था और राजकुमार अपने पिता के पुराने मित्र और सलाहकार के आगमन से प्रसन्न और चकित हुआ। अबशालोम को विश्वास था कि वो सफल होगा। यहां तक उसकी युक्तियां सफल हुई थीं और अपने सिंहासन को स्थिर करने और प्रजा के विश्वास को जीतने के लिए उत्सुक उसने हूशै का अपने दरबार में स्वागत किया। अबशालोम अब एक विशाल सेना से घिरा था, लेकिन उसमें अधिकतर पुरुषदों ने युद्ध में भाग नहीं लिया था। अहितोपेल जानता था कि दाऊद की स्थिति इतनी निराशाजनक नहीं थी। प्रजा का बड़ा भाग अभी भी उसके पक्ष में था। वो अनुभवी योद्धाओं से घिरा हुआ था जो अपने राजा के प्रति सत्यनिष्ठ थे, और उसकी सेना योग्य और अनुभव प्राप्त सेनापतियों के नेतृत्व में थी। अहितोपेल जानता था कि नए राजा के पक्ष में उत्साह के पहले प्रवाह के बाद एक प्रतिक्रिया होगी। यदि उपद्रव असफल रहा तो अबशालोम की ओर से अपने पिता के साथ पुनर्मिलन करने की संभावना थी। फिर प्रमुख सलाहकार होने के नाते अहितोपेल को उपद्रव का सबसे बड़ा दोषी माना जाएगा और उसे सबसे कठोर दंडाज्ञा मिलेगी। अबशालोम को कदम पीछे हटाने से रोकने के लिए अहितोपेल ने उसे ऐसा काम करने का सुझाव दिया जो संपूर्ण राष्ट्र की दृष्टि में पुनर्मिलन असंभव बना देता। नारकीय चातुर्य के साथ इस धूर्त और सिद्धांतहीन राजनेता ने अबशालोम को विद्रोह के अतिरिक्त कौटुंबिक व्यभिचार के लिए उत्तेजित किया। संपूर्ण इसराइल की दृष्टि में पूर्वी राष्ट्रों की परंपरा के अनुसार अबशालोम ने अपने पिता की सहवासनियों को अपनाना था और इस प्रकार अपने पिता के सिंहासन का उत्तराधिकारी होने की घोषणा करनी थी। अबशालोम ने इस धूर्ततापूर्ण सलाह के अनुसार किया और इस प्रकार भविष्यवक्ता द्वारा दाऊद को दिया गया परमेश्वर का वचन पूरा हुआ। सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने होकर तुझ से दूसरे को दूंगा, और वो दिन दोपहर में तेरी पत्नियों के साथ कुकर्म करेगा।
दूसरा शमूएल 12:11-12।
ऐसा नहीं था कि परमेश्वर ने इन दुष्टतापूर्ण कृत्यों को प्रेरित किया, लेकिन दाऊद के पाप के कारण उसने इन्हें रोकने के लिए अपनी सामर्थ्य का अभ्यास नहीं किया। अहितोपेल को अपनी बुद्धिमत्ता के लिए उच्च सम्मान प्राप्त था, लेकिन परमेश्वर की ओर से आने वाले प्रलोभनों से अभावग्रस्त था। नीति वचन 9:10 में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और इसी का अहितोपेल में अभाव था। नहीं तो वो देशद्रोही की सफलता कौटुंबिक व्यभिचार पर आधारित नहीं करता। दुष्ट हृदय मनुष्य दुष्टता के षड्यंत्र रचते हैं, मानो उनकी युक्तियों को निष्फल करने के लिए कोई ईश्वरीय रक्षा नहीं है, लेकिन वो स्वर्ग में विराजमान है। हमेशा प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। भजन संहिता 2:4। नीति वचन 1:30-32 में लिखा है, उन्होंने मेरी सम्मति न चाही वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना, इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल के अधीन हो जाएंगे, क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा और निश्चित रहने के कारण मूर्ख लोग नष्ट होंगे।
अपनी निजी सुरक्षा को सुरक्षित करने के षड्यंत्र में सफल होने के पश्चात अहितोपेल ने अबशालोम पर दाऊद के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करने की आवश्यकता का दबाव डाला।
मुझे 1000 पुरुष छाटने दे और मैं उठकर आज ही रात को दाऊद का पीछा करूंगा, और जब वो थका मादा और निर्बल होगा तब मैं उसको पकड़ूंगा और उसको डराऊंगा, और जितने लोग उसके साथ हैं सब भागेंगे। मैं राजा ही को मारूंगा और मैं सब लोगों को तेरे पास लौटा लाऊंगा। इस योजना को राजा के सभी सलाहकारों ने स्वीकृति दे दी। यदि इसका पालन किया गया होता और परमेश्वर ने उसे बचाने को हस्तक्षेप न किया होता तो दाऊद अवश्य ही मारा जाता। लेकिन सुप्रसिद्ध अहितोपेल की बुद्धि से श्रेष्ठ बुद्धि घटनाओं को निर्देशित कर रही थी। यहोवा ने तो अहितोपेल की अच्छी सम्मति को निष्फल करने की ठान ली थी कि वो अबशालोम ही पर विपत्ति डाले।
हूशै को सभा में नहीं बुलाया गया और वह बिना बुलाए प्रवेश नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उस पर गुप्तचर होने का संदेह किया जा सकता था।
लेकिन सभा के समाप्त होने पर अबशालोम ने उसके समक्ष अहितोपेल की योजना प्रस्तुत की, क्योंकि वह अपने पिता के सलाहकार के निर्णय का सम्मान करता था। हूशै ने देखा कि यदि प्रस्तावित योजना का पालन किया गया तो दाऊद की हार तय थी, और उसने कहा, जो सम्मति अहितोपेल ने इस बार दी वह अच्छी नहीं है, क्योंकि तू अपने पिता और उसके जनों को जानता है कि वे शूरवीर हैं, और बच्चा छीनी हुई रीछनी के समान क्रोधित होंगे। तेरा पिता योद्धा है और अन्य लोगों के साथ रात नहीं बिताता। इस समय वह किसी गड्ढे या किसी अन्य स्थान में छुपा होगा। उसने तर्क रखा कि यदि अबशालोम की सेना दाऊद का पीछा करेगी, वे राजा को बंदी नहीं बना पाएंगे, और यदि विजय के बजाय उनकी हार हुई तो उसका साहस टूट जाएगा और उससे अबशालोम के अभियान को बहुत हानि पहुंचेगी। उसने कहा, समस्त इसराइल जानता है कि तेरा पिता वीर है और उसके संगी बड़े योद्धा है, और उसने एक योजना का सुझाव दिया जो शक्ति प्रदर्शन को पसंद करने वाले अभिमानी और स्वार्थपूर्ण स्वभाव के लिए आकर्षक था।
इसलिए मेरी सम्मति यह है कि दान से लेकर बैशेबा तक रहने वाले समस्त इसराइली तेरे पास समुद्र तीर की बालू के किनकों के समान इकट्ठे किए जाएं, और तू आप ही युद्ध को जाए। इस प्रकार जब हम उसको किसी न किसी स्थान में जहां वो मिले जा पकड़ेंगे, तब जैसे ओस भूमि पर गिरती है वैसे ही हम उस पर टूट पड़ेंगे। तब ना तो वो बचेगा और ना उसके संगियों में से कोई बचेगा। यदि वो किसी नगर में घुसा हो तो सब इसराइली उस नगर के पास रस्सियां ले आएंगे और हम उसे नदी में खींचेंगे, यहां तक कि उसका एक छोटा सा पत्थर भी न रह जाएगा।
तब अबशालोम और सब इसराइली पुरुषों ने कहा, एरेकी हूशे की सम्मति अहितोपेल की सम्मति से उत्तम है। लेकिन एक था जो धोखे में नहीं आया, जिसने अबशालोम की प्राणघातक गलती के परिणाम का पूर्वानुमान लगाया। अहितोपेल जानता था कि विद्रोही अपना अभियान हार चुके, और वह ये भी जानता था कि राजकुमार की नियति कुछ भी हो, उस सलाहकार के लिए कोई आशा नहीं थी जिसने उसके सबसे बड़े अपराधों को उत्तेजित किया था। अहितोपेल ने अबशालोम को विद्रोह के लिए प्रोत्साहित किया था। उसने अबशालोम को सबसे घृणास्पद दुष्टता अपने पिता का निरादर करने की सलाह दी थी। उसी ने दाऊद को मार डालने की सलाह दी थी और इस कार्य की उपलब्धि की योजना तैयार की थी। उसने दाऊद के साथ अपने निजी पुनर्मिलन की संभावना को समाप्त कर दिया था, और उसके सामने अबशालोम द्वारा भी किसी और को वरीयता दी जा रही थी। क्रोधित, द्वेषपूर्ण और मायूस अहितोपेल अपने नगर में जाकर अपने घर में गया और अपने घराने के विषय जो जो आज्ञा देनी थी वह देकर अपने को फांसी लगा ली, और वह मर गया। ऐसा था उसकी बुद्धिमत्ता का परिणाम, जो इतना प्रतिभावान था लेकिन जिसने परमेश्वर को अपना सलाहकार नहीं बनाया। शैतान मनुष्य को प्रसन्न करने वाली प्रतिज्ञाओं से भरमाता है, लेकिन अंत में प्रत्येक प्राणी को ज्ञात होगा कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो 6:23।
हूशै को चंचल राजा के द्वारा अपनी सम्मति के अनुसरण किए जाने का यकीन नहीं था, इस कारण उसने दाऊद को सचेत करने में देर नहीं की ताकि वो अविलंब यर्दन पार बचकर निकल जाए। उन याजकों को जिन्हें अपने पुत्रों के माध्यम से आगे भेजना था, हूशै ने संदेश भेजा। अहितोपेल ने तो अबशालोम और इसराइली पुरनियों को इस प्रकार की सम्मति दी, और मैंने इस प्रकार की सम्मति दी है, इसलिए अब आज रात जंगली घाट के पास न ठहरना, अवश्य पार हो जाना। ऐसा न हो कि राजा और जितने लोग उसके संग हों सब नष्ट हो जाएं। नौजवान संदेह के घेरे में आ गए और उनका पीछा किया गया, लेकिन फिर भी वे अपने खतरनाक विशेष कार्य को संपन्न करने में सफल रहे। पहले दिन के पलायन पश्चात थके हुए और दुखी दाऊद को यह संदेश प्राप्त हुआ कि उसे उसी रात यर्दन को पार करना था, क्योंकि उसका पुत्र उसके प्राणों का प्यासा हो गया था। इस घोर संकट के समय उस पिता और राजा की भावनाएं क्या रही होंगी जिनके साथ इतना गलत हुआ था। एक पराक्रमी शूरवीर रणकाशल राजा, जिसका कथन ही नियम था, जिसे उस पुत्र ने धोखा दिया जिससे उसने प्रेम किया, जिसके साथ दयालुतापूर्ण व्यवहार किया था,
जिसमें अंधा विश्वास किया, जिसकी प्रजा के उन सदस्यों ने विश्वासघात किया और उसे छोड़ दिया जो उसके साथ सम्मान और स्वामी भक्ति के अटूट बंधनों से बंधे थे। किन शब्दों में दाऊद ने अपने हृदय की भावनाओं को अभिव्यक्त किया? अपनी सबसे अंधकारमय परीक्षा की घड़ी में दाऊद का हृदय परमेश्वर पर स्थिर था और उसने गीत गाया,
हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचे करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वो अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेटकर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है, हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। भजन संहिता 3:1-8। दाऊद और उसकी संपूर्ण मंडली, योद्धा और नीतिज्ञ, वृद्ध और नौजवान, स्त्रियां और छोटे बालक, सभी ने रात के अंधेरे में गहरी और तीव्र गति से बहती नदी को पार किया। पौ फटने तक उनमें से एक भी ना रहा जो यर्दन के पार ना हो गया हो। तब दाऊद और उसकी सेना महनैम पहुंचे, जो इशबोशेत का शाही निवास रहा था। पहाड़ी प्रदेश से घिरा हुआ ये एक सशक्त किलेबंद शहर था, जो युद्ध के समय में शरण के लिए अनुकूल स्थान था। ये एक सामग्री संपन्न देश था और लोग दाऊद के अभियान के प्रति सहायक थे। यहां उसके साथ कई समर्थक जुड़ गए और धनवान कुटुंबी बहुतायत से खाद्य सामग्री और आवश्यकता की वस्तुएं लेकर आए। हूशै के परामर्श ने दाऊद के लिए बच निकलने के अवसर का लक्ष्य प्राप्त कर लिया था, लेकिन उतावले और अविवेकी राजकुमार को अधिक समय के लिए नियंत्रित नहीं रखा जा सका और वो शीघ्र ही अपने पिता का पीछा करने निकल पड़ा और अबशालोम सब इसराइली पुरुषों समेत यर्दन के पार गया। अबशालोम ने दाऊद की बहन अबीगेल के पुत्र अमासा को अपनी सेनाओं का सेनापति बनाया। उसकी सेना विशाल थी, लेकिन वो उसके पिता के अनुभवी सैनिकों का सामना करने के लिए अनुशासनहीन थी और पर्याप्त रूप से तैयार नहीं थी। दाऊद ने अपनी सेना को अबीशे और गतवासी इतै के नेतृत्व में 3 टुकड़ियों में विभाजित कर दिया। वो रणभूमि में सेनाओं का नेतृत्व स्वयं करना चाहता था, लेकिन सेना के अधिकारियों, सलाहकारों और लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा, तू जाने ना पाएगा, क्योंकि चाहे हम भाग जाएं, वे हमारी चिंता ना करेंगे, वरन हम में से आधे मारे भी जाएं तो भी वे हमारी चिंता ना करेंगे, परंतु तू हमारे जैसे 10,000 पुरुषों के बराबर है, इसलिए अच्छा ये है कि तू नगर में से हमारी सहायता करने को तैयार रहे। और राजा ने उनसे कहा, जो कुछ तुम्हें भाए वही मैं करूंगा। 2 शमूएल 18:3-4।
नगर की प्राचीरों से विद्रोही की लंबी कतारें पूरी तरह दृश्यमान थी। दाऊद की सेना बलात्ग्राही के साथ आई। विशाल सेना की तुलना में मुट्ठी भर प्रतीत हो रही थी, लेकिन जब राजा ने विद्रोही सेना पर दृष्टि डाली, उसके मन के सर्वोपरि विचार राज्य और सिंहासन के बारे में नहीं थे और ना ही उसके जीवन के बारे में जो युद्ध के परिणाम पर निर्भर थे। पिता का हृदय अपने विद्रोही पुत्र के लिए प्रेम और दया से परिपूर्ण था। जैसे जैसे पंक्तिबद्ध सेना नगर के फाटकों से बाहर निकली, दाऊद ने अपने विश्वसनीय सैनिकों को इस विश्वास के साथ कि इसराइल का परमेश्वर उन्हें विजयी करेगा, आगे बढ़ने को कहते हुए प्रोत्साहित किया। लेकिन यहां भी वो अबशालोम के लिए अपने प्रेम को दबा न सका। जब योआब प्रथम सैन्य दल का नेतृत्व करता राजा के पास से निकला, 100 रणभूमियों के विजेता ने सम्राट का अंतिम संदेश सुनने के लिए अपना ऊंचा सिर नीचे झुकाया और कांपते स्वर में राजा ने कहा, मेरे निमित्त उस नौजवान अर्थात अबशालोम के साथ कोमलता से व्यवहार करना। लेकिन राजा की चिंता से ऐसा प्रतीत हुआ
मानो अबशालोम उसे अपने राज्य और उसकी राजशक्ति के प्रति निष्ठावान प्रजा से भी प्रिय था, और इससे अस्वाभाविक पुत्र के प्रति उनका क्रोध और भी बढ़ गया।
युद्ध का स्थान। यर्दन के पास एक जंगल था जिसमें अबशालोम की सेना की भारी संख्या उसके लिए केवल असुविधा थी। जंगल की झाड़ियों और दलदल में ये अनुशासनहीन सैन्य दस्ता असंगत और बेकाबू हो गया, और दाऊद की सेना ने इसराइलियों को हरा दिया। उस दिन भारी नरसंहार हुआ और 20,000 व्यक्ति मारे गए। अबशालोम ये देखते हुए कि उसकी सेना हार चुकी थी, भागने के लिए पीछे मुड़ा, और जब वो खच्चर पर सवार एक बड़े बांज वृक्ष के नीचे से निकल रहा था तो उसका सिर अटक गया और उसका खच्चर उसके नीचे से निकल गया। वो असहाय होकर अधर में लटका रहा और अपने शत्रुओं का शिकार हो गया। इस स्थिति में उसे एक सैनिक ने देखा, लेकिन राजा को अप्रसन्न करने के डर से उसने अबशालोम को छोड़ दिया। लेकिन ये आंखों देखा हाल योआब को सुनाया। योआब को नैतिकता के आधार पर कोई झिझक नहीं थी। उसने दो बार अबशालोम का दाऊद के साथ पुनर्मिलन कराने में अबशालोम की सहायता की थी और उसके विश्वास को दोनों बार तोड़ा गया था। योआब की मध्यस्थता के माध्यम से अबशालोम को मिली सुविधाओं के अभाव में ये उपद्रव कभी भी घटित नहीं होता। अब इस कुकृत्य के प्रवर्तक को एक झटके में नष्ट करना योआब के वश में था। उसने 3 लकड़ी के तीर हाथ में लेकर अबशालोम के हृदय को छेद डाला। तब लोगों ने अबशालोम को उतारकर उस वन के एक बड़े गड्ढे में डाल दिया और उस पर पत्थरों का एक बड़ा ढेर लगा दिया।
इस प्रकार इसराइल में विद्रोह के प्रवर्तकों का विनाश हुआ। अहीतोपेल अपने ही हाथों से मरा था। चिरकालीन निंदा के प्रतीक के रूप में राजवंशी अबशालोम, जिसका तेजस्व सौंदर्य इसराइल की शान था, नौजवानी में काट डाला गया था। उसके शव को एक गड्ढे में फेंक दिया गया था और पत्थरों के ढेर से ढाक दिया गया था। अपने जीवन काल में अबशालोम ने राजा की तराई में अपने लिए एक स्तंभ खड़ा किया था, लेकिन जंगल में वो पत्थरों का ढेर उसकी कब्र को चिन्हित करने वाला एकमात्र स्मारक था। विद्रोह के अगुआ के मारे जाने के बाद योआब ने तुरही के स्वर पर भागती हुई सेना का पीछा करती अपनी सेना को वापस बुलाया और राजा तक ये समाचार पहुंचाने के लिए तुरंत ही संदेशवाहकों को भेजा गया। नगर की प्राचीर पर से रणभूमि की ओर देखते हुए प्रहरी ने एक व्यक्ति को अकेले दौड़ते हुए आते देखा। उसके पीछे एक और व्यक्ति दिखाई दिया। जब पहला व्यक्ति पास आया, प्रहरी ने फाटक के पास प्रतीक्षा करते हुए राजा से कहा, मुझे तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि पहले का दौड़ना सादोक के पुत्र अहिमास का सा है। राजा ने कहा, वो भला मनुष्य है तो भला संदेश लाया होगा। तब अहिमास ने पुकार कर राजा से कहा, सब कुशल है। फिर उसने भूमि पर मुंह के बल गिर राजा को दंडवत करके कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा धन्य है जिसने मेरे प्रभु राजा के विरुद्ध हाथ उठाने वाले मनुष्य को तेरे वश में कर दिया है। राजा की उत्सुकता भरे प्रश्न, क्या वो नौजवान अबशालोम कुशल है, अहिमास ने अस्पष्ट उत्तर दिया।
दूसरा संदेशवाहक ऊंचे स्वर में पुकारते हुए आया, मेरे प्रभु राजा के लिए ये समाचार है, यहोवा ने आज न्याय करके तुझे उन सबके हाथ में बचाया है जो तेरे विरुद्ध उठे थे। फिर से पिता के होठों से वही अवशोषक प्रश्न आया, क्या वो नौजवान अबशालोम कुशल है। उस दुखद समाचार को छुपाए रखने में असमर्थ दूत ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु राजा के शत्रु और जितने भी तेरी हानि के लिए उठें, उनकी दशा उस नौजवान की सी हो। ये पर्याप्त था। दाऊद ने आगे प्रश्न नहीं किया, लेकिन सिर झुकाए वो फाटक के ऊपर की अटारी पर रोता हुआ चढ़ने लगा और चलते चलते यों कहता गया, हाय मेरे बेटे अबशालोम, मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे अबशालोम, भला होता कि मैं आप तेरे बदले मरता, हाय अबशालोम, मेरे बेटे, मेरे बेटे। रणभूमि में लौटते हुए विजयी सेना नगर के निकट आ पहुंची और उनकी जय जयकार से पहाड़ गूंज उठे।
लेकिन नगर के फाटकों में प्रवेश करते ही जय जयकार शांत हो गया। उनकी पताकाएं नीचे हो गईं और दृष्टि नीचे किए हुए वे विजेताओं के बजाय पराजित हुओं की तरह आगे बढ़े, क्योंकि राजा उनका स्वागत करने की प्रतीक्षा में नहीं खड़ा था, वरन फाटक के ऊपर की अटारी से उसका विलाप सुनाई दे रहा था। हे मेरे बेटे अबशालोम, मेरे बेटे अबशालोम, भला होता कि मैं आप तेरे बदले मरता। हाय अबशालोम बेटे, मेरे बेटे। इसलिए उस दिन की विजय सब लोगों की समझ में विलाप ही का कारण बन गई, क्योंकि लोगों ने उस दिन सुना कि राजा अपने बेटे के लिए खेदित है। इसलिए उस दिन लोग ऐसा मुंह चुराकर नगर में घुसे जैसे लोग युद्ध से भाग आने से लज्जित होकर मुंह चुराते हैं।
योआब क्रोध और घृणा से भर गया कि राजा अपने बेटे के लिए खेदित है, इसलिए लोग ऐसा मुंह चुराकर नगर में घुसे जैसे लोग युद्ध से भाग आने से लज्जित होकर मुंह चुराते हैं। योआब क्रोध और घृणा से भर गया। परमेश्वर ने उन्हें विजय उल्लास और हर्ष का कारण दिया था। इज़राइल की जानकारी में यह सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह था जिसे दबा दिया गया था, और फिर भी ये महान विजय उसके संदर्भ में शोक में परिवर्तित हो गई, जिसके अपराध ने हजारों योद्धाओं के प्राण ले लिए थे। उस अशिष्ट और मुंहफट कप्तान ने राजा की उपस्थिति में घुसकर निर्भीकता से कहा, तेरे कर्मचारियों ने तेरा और तेरे बेटे बेटियों और पत्नियों और सहवासनियों का प्राण बचाया है, परंतु तूने आज के दिन उन सबों का मुंह काला किया है, इसलिए कि तू अपने बैरियों से प्रेम और अपने मित्रों से बैर रखता है। तूने आज ये प्रकट किया कि तुझे हाकिमों और कर्मचारियों की कुछ चिंता नहीं, वरन मैंने आज जान लिया कि यदि हम सब आज मारे जाते और अबशालोम जीवित रहता तो भी तू बहुत प्रसन्न होता। इसलिए अब उठकर बाहर जा और अपने कर्मचारियों को शांति दे, नहीं तो मैं यहोवा की शपथ खाकर कहता हूं कि यदि तू बाहर न जाएगा तो आज रात को एक मनुष्य भी तेरे संग न रहेगा, और तेरे बचपन से लेकर अब तक जितनी विपत्तियां तुझ पर पड़ी है उन सब से ये विपत्ति बड़ी होगी।
हृदय से दुखी राजा के लिए ये उलाहना कर्कश और निर्दयी भी थी, लेकिन राजा ने बुरा नहीं माना। यह देखते हुए कि उसका सेनापति सही था, वह नीचे उतरकर फाटक तक गया, और जैसे जैसे सैनिक उसके पास से निकले उसने साहस और सराहना भरे शब्दों के साथ उनका स्वागत किया।